हासन तने दुर्गुणम चार बरहा वसुलम
कमपिने कुजा सार
कारण नौमी गोपी
मारो
लगा नहीं लगाने से गोपी नहीं लगाने से चलेगा ही कोई भी फिर इसके बाद में इसके बाद वाला वैसा नौम गोपी कुमार मैंने मैं जहां भी उनकी वंदना ऐसी वो जरूर ऐसा है इस गीतों में सबसे सार हुआ गोपियों से संबंधित यदि कृष्ण का पर से संबंधित गोपियों से संबंधित होगी सबसे अधिक श्रेष्ठ संगीत आज
दीनपंथो जगत्पते गोपेश गोपिका पंथ राधा कांतम गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणाम आ देवी कातु मरक दुर्गयाचा जाते निपत्त भूमिदंडवत उर्भकार के अश्या प्रसाद मधुदस्य धनस्य दीप्त अंगश्यामलिं चकाग्रभित मंदे कृतेन्दीवरं जर्दं जागुदरोति संविदगतं पट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं मुदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्पन्दनिवेशितौ भक्तियापराधलक्षतरंग मध्ये कृपाई शरण प्रपन्ना वंदे नमस्ते चरणचंद्राय राधिकाय प्रदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय नो विरह कातरया जुहाव पुत्रे तन्मयतया सर्वभिनेवास्मि कवैवास्मि
सबसे विद्या कौन बनी कृष्ण भक्ति की विद्या कृष्ण भक्ति गुरु विद्या ही सबसे बड़ी
विद्या
उन्होंने कहा सबसे बड़ी कीर्ति क्या है कृष्ण भक्ति कृष्ण का भक्त होना सबसे बड़ी कीर्ति इसको भी अच्छी तरह से अपनी संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति कौन है राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही सबसे बड़ी संपत्ति जो लोग इसके लिए चेष्टा करते हैं आकांक्षा करते हैं और जिनको ये मिल जाता है कृष्ण की वही संसार में क्या उसको वैकुंठ और ब्रज और सब में बड़ी बढ़ाती है कृष्ण प्रेम गोपियों का प्रेम सबसे बड़ा ऐसा प्रेम जो हो जाए किसी को तो सबसे बड़ा प्रेम दुख में सबसे बड़ा दुख का क्या है और सुख में भक्तों का संग से बढ़कर गौरव यदि भक्त का संग मिल गया तो सब कुछ मिल गया भक्त के संग को पाने के लिए जरूरत होगी तो पृथ्वी ब्रह्मांड ब्रह्मलोक स्वर्गलोक वैकुंठ लोक इन सब का भी सब संपत्ति को छोड़ करके वैष्णव का संग सब कुछ कितनी बड़ी चीज है। तो वैष्णव का संग मिलना सबसे सुखदायी और सबसे बड़ा दुखदायी है वैष्णव का संग। यदि वैष्णव का संग किसी प्रकार से छूट गया तो ये संसार में घूमना पड़ेगा। अब वैष्णव का संग यदि हो गया तो सब ठीक है। तो वैष्णव का संग किसको कहते हैं? संग संस्कृत समस्त शब्द जितने हैं अर्थवाचक होते हैं उस शब्द में ही सब कुछ छिपा रहा है। संग माने सम्यक रूपेण गमनम अनुगमनम किसी वैष्णव के साथ में है संग कर रहे हैं तो उनके जितने उपदेश हैं जीवन चरित्र है उनके हृदय के भाव हैं सदाचार हैं सबको भी अनुगमन करना। कैसे चलते हैं कैसे विचार करते हैं क्या करते हैं उनके अंदर में क्या भावना है कैसे भजन करते हैं कैसे गुरु सेवा करते हैं कैसे उनका दैनंदिन जीवन है वो सब को हम लोग जब अनुगमन करेंगे तब तो हुआ संग विशेष करके ददाति पतिगृहणाति भूयमाख्याति इच्छति षडविधम प्रतिपूर्वक यदि विषय लोगों का यदि संग करेंगे तो संसार में आवागमन होगा। और यही संग यदि वैष्णवों के साथ में अच्छे संतों के साथ में हो जाए तो संसार से उद्धार का ये कारण होगा। तो संस्कृति का कारण है संग वैसे ही लोगों के साथ में वही संग संत महापुरुषों के साथ में हो गया तो ये संसार से उद्धार का कारण बन जाता है। संग का तात्पर्य हमारे शिव में भू होते हैं क्या होते हैं ना वो भी तो संग करता है। जब हम पलंग पर सोते हैं तो कुछ खटमल भी हमारा संग कर सकते हैं तो ये लोग संग में चूहे भी हम लोगों के घर में संग करते हैं ये सब संग है। यथार्थ रूप में उनके मनों के भाव जैसे हैं उन सबको अनुगमन करने का नाम संग है। विशेष करके यहाँ पर भक्तों का संग मान्य कि कोई पुत्र भी है भगवत भजन नहीं करता तो क्या करेंगे उसको घर से बाहर कर देंगे ना क्या करेंगे भाई उसका संग मत करो। आता है खाता है पीता है चलता है संसार का सब करता है उसमें छेड़खानी मत करो। अपना भजन करो अपना परमार्थिक संग उसे मत बस आवश्यकता होगी तो उसे हम खोली देंगे। इसलिए संग माने नहीं होता है उनके भाव का आचरण का विचार का अनुगमन करने का नाम। जैसे हरदास ठाकुर का कोई संग कर रहा है क्या करेगा 300,000 नाम करते हैं तो 300,000 नाम तो दिन रात उनको और कोई चीज की फुर्सत नहीं ऐसे तुम भी करो भगवान के प्रति जैसी उनकी भावना है तुम भी इसका नाम। शिष्य गुरु का संग करता है माने क्या अपने अनुकूल होगा तो ग्रहण कर लेगा और प्रतिकूल कुछ बोलेंगे तो मन खराब कर देगा उसको छोड़ देंगे ऐसा नहीं सब कुछ लेकर के उनके मन की भावना को कृष्ण का भजन की शुरू करते हैं। संसारिक व्यवहार उनका लोगों के साथ में करना ये सब कुछ शिक्षा मुक्त मध्य कौन जी मुक्त मानी ये भी हमने कल बताया मुक्तों की परिभाषा बहुत सीधी, इसमें से आधार उसने दिया संसार से अनाशक्त होना ही मुक्ति है। फिर बताया आतंक दुख अतत जन्म वर्ण से रहित होना ही मुक्ति। फिर बताया अपने स्वरूप में अतत बाहिर रूपों को छोड़ करके स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने का नाम। अब स्वरूप से दो बताया, जीव के स्वरूप में और भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही यथार्थ। फिर एक और बतलाया भगवान के प्रति प्रेम होना ही यथार्थ मुक्ति का स्वरूप। उस प्रेम में भी यदि जिसका स्वरूप है गोपी भाव का, उसको प्राप्त होना ही सबसे सर्वाधिक मुक्ति की कथा। यही बतला है गानों में संगीत में जीव का अपना धर्म क्या है। राधा कृष्ण की प्रेमी प्रेम के लिए की या प्रेम विलास की बातों का मर्म जिस गीत का संगीत का उद्देश्य हो वो यथार्थ संगीत। गोपियों के मुख से निकले हुए कृष्ण के प्रति जो भाव है, चाहे वो भ्रमर गीता में है गोपी गीत में हो या बंसी वेणु गीत में हो, वो सबसे संसार में विश्व में संगीत के ऊंचे मान के लिए इनसे बढ़कर के और कोई गीत नहीं। हमारे वैष्णव कवियों ने आत्मदर्शी कवियों ने रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कविकर्ण को विश्वनाथ चतुर्थी छात्र इत्यादि, गंगोत्तम छात्र इत्यादि जो सब कीर्तन करते हैं ना, ये सब संगीत यही राधा कृष्ण की प्रेम के लिए के संबंध में यह इसलिए सर्वोत्तम यही गान है। हमारे देश में आजकल कल 15 अगस्त गया ना, तो बंगाल के दो बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, एक है बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ, तो उनका था वंदे मातरम। किनका?
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय।
इसके बाद में एक और बन गया जनगण मन अति न्याय कहे, फिर
भारत
भाग रही। दोनों में कोई रद्दी की टोकरी में फेंकने लगे, कोई भी हमारे भारत के राष्ट्रीय गान होने को उपयुक्त नहीं। अरे भागवत का कुछ करते कृष्ण संबंधी राम संबंधी भी होगा, भगवान के भाव का सब तो होगा, वो ले कर नहीं सकते हो। एक वंदे मातरम, माता का वंदनम हूँ मैं किया, किंतु पिताजी की वंदनम हूँ।
भारत तो माता देश
बस माता जी रहेंगे, पिताजी का कोई स्थान ही नहीं है। और यदि भगवान की वंदना कुछ होती ना, जब माता कल्याण कुछ होता, ये सब नास्तिक बंकिम चंद्र जैसे नास्तिक, ये हमारे दूसरे पूर्ण नास्तिक, भगवान से उन्हों का कोई भी संबंध। और तो राष्ट्र एक धर्म प्रधान देश है ना, तो ये सब का वसूल। जिस गान में कीर्तन में भगवान का कोई महत्व नहीं है वो गान गान ही नहीं है। श्रेय मत है कौन से जीवे ऐसा, ये पूछ रहे हैं महापुरुष। कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आ। श्रेय माने होता है साधारण रूप में समझिए एक श्रेय और एक प्रेय। जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे जीवन में अलभ्य है, जो जिसको पाया नहीं और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रेय।
जैसे हमको पुत्र नहीं है पुत्र मान, विवाह नहीं हो रहा पत्नी मान, धन नहीं है धन मान, स्वर्ग नहीं है स्वर्ग मान,
मुक्ति नहीं है मुक्ति मान, ये सब जितने हैं क्रिया, ये जीव का स्वरूप नहीं है।
श्रेय क्या है? श्रेय किसको का? आत्यंतिक कल्याण, जिसके होने के बाद में अब कोई कल्याण अकल्याण की कोई संभावना नहीं होती, उसको कहते हैं स्त्री। प्रेय मिलने पर फिर हमारा अकल्याण हो सकता है, पुत्र मिला पुत्र मर गया, पुत्र को पुत्र हो गया, फिर दूसरा प्रेय होगा जो इसकी मति सुधार दी, या एक और पुत्र होगा, स्वर्ग मिल गया फिर वहां से गिर गया फिर स्वर्ग, मुक्ति जब हम मिलेगी तब देखेंगे कोई सुख नहीं है तो वो मूवी दुख में पड़ना चाहिए, इसलिए ये सब नित्य कल्याण का नहीं है, भगवत भक्ति ही नित्य कल्याण। ये कैसे मिलेगी? भक्तों के संग में, इसलिए सबसे कल्याणजनक संसार में यदि साधु संग मिल गया तो हमारा कल्याण हमारे कर्तव्य में आ, और साधु संग यदि हो गया गड़बड़। एक आदमी कह रहे हैं अच्छे पढ़े लिखे, मैंने पूछा कि गुरु किसको कहते हैं, कहते हैं गुरु गुरु ही भगवान है, गुरु ही भगवान, उनको ये नहीं जानते जो हमारे शास्त्र में आज तक किसी भी गुरु ने अपने को भगवान नहीं कहा, सब भगवान का दास। प्रभु हमारे सिद्ध हैं, मैं उनका दास हूं, इस संबंध को जिसने जोड़ दिया वो गुरु है। कृष्ण के सेवा की आंखें हमारी खोल दी, ज्ञानंजन सलाह कराया, ज्ञान रूपी अंजन का सलाह का लगा करके हमारे आंखें खोल दी और कृष्ण के चरणों में हमें अर्पित कर दिया। वो गुरु जो गुरु स्वयं भगवान कहता है तो वो एक तरह से नास्तिक, इसलिए गुरु वही है संत वही है जो भगवान के चरणों में हमें, उसको भगवान से भी अधिक अधिक आदर करना चाहिए, क्योंकि हम तो भगवान जानते नहीं थे, उन्होंने भगवान के चरणों में हमें पहुंचा दिया, इसलिए जस्य देवे पराभक्ति यथा देवी तथा, भगवान के प्रति जितना भाव है उतना ही हमको प्रति भाव है। ऐसा ही कल्याणकारी जो संत है वो वही हमारा जीवों के लिए श्रेय, यदि संत मिल गया तो समझेंगे संसार हमारा समाप्त होने वाला है, जब संसार समाप्त होने को होता है तो ऐसा साधु संत होता है। भगवत में तो लिखा भगवर्गो यदि संसार अब समाप्त होने को हुआ तो साधु संग मिल, या साधु संग मिल गया तो समझे कि हमारा कल्याण हो गया, अब भगवान को पाना, इसलिए भगवान का पाना बड़ा दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ संसार, किंतु भगवत भक्तों का मिलना उससे भी अधिक। जब तक संत नहीं मिला तब तो समझे भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, आज यदि संत मिल गया समझो कि अब मिल गई, ऐसा समझो। कार स्मरण जीव करिबे अनुखम, जीवों को सब समय क्या स्मरण करना चाहिए, हम लोग स्मरण क्या करते हैं, कोई दुख आ गया तो उसके प्रतिकार के लिए सब समय चिंता करते हैं, कैसे दुख आया क्या हुआ, बस दिन रात इसमें हमारी क्या कमी है, क्या क्या कमियां हैं जिसमें सुख नहीं मिल रहा है संसार, बस इसी की चिंता, हमारा विरोधी कौन है, हमारा सुख का विरोधी कौन है, बस यही चिंता थी और कोई चिंता ही नहीं, भविष्य की चिंता आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बस ये सब, रोग हो गया उसकी चिंता, कहते कि ये सब मत करो, यदि इनको दूर करना है तो क्या करो, सब समय कृष्ण गुण लीला स्मरण, प्रधान स्मरण, भगवान के नाम की महिमा, उनके गुण की महिमा, उनकी लीलाएं, ये सब दिन रात स्मरण करो। समय न मिले संसार की ये दुख अभाव रोग अभियोग ये सब स्मरण, बस उसे ये सब कुछ भगवान का नाम स्मरण किया अजामिल। उन्होंने अपने पूर्व कर्मों को स्मरण नहीं किया, छोड़ दिया। ये वाल्मीकि जी, उनका पहला नाम
रत्नाकर,
रत्नाकर दस, जब नारद जी ने उपदेश दिया तो सब कर्मों को सब कुछ भूल गए और भगवान का नाम स्मरण, बस इसी से बेड़ा पार गए। इसलिए भगवान नाम गुण लीला का स्मरण करना ही सबसे प्रधान स्मरण, इसी को स्मरण किया और बाकी सब स्मरण इसके प्रभाव से सब दूर हो गए। ध्येय मध्य जीवे कर्तव्य कौन ध्यान, ध्येय मध्य जीवे कर्तव्य कौन ध्यान, जीव के बहुत ही ध्येय हो सकते हैं। ध्येय माने
ध्यान जो दो,
ध्यान जो, ध्यान माने क्या, ध्यान
देव वस्तु को बार बार चिंतन करना है, ध्यान
भी माने क्या होता है,
बुद्धि,
भी माने बुद्धि, बुद्धि जिसको विचार करती है, जिसमें बुद्धि संपूर्ण रूप से लग जाए, यहाँ पर भी माने मन भी होगा, मन बुद्धि इत्यादि एकदम संपूर्ण रूप से लग जाए और दूसरे वस्तु का चिंतन न करे, उसको कहते हैं संत प्रारंभिक रूप। तो बुद्धि को किस चीज में लगाना चाहिए, राधा कृष्ण पदम पूज ध्यान, राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान, यही सबसे बुद्धि को लगाना चाहिए। कैसे ध्यान करेंगे, जैसे गुरु जी ने बताया, मंत्र के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, कृष्ण की लीलाओं का ध्यान, कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान, राधा जी के चरण कमलों का ध्यान, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भागवत की टीका में या रूप गोस्वामी ने भक्त गोस्वामी सिंधु ने राधा जी के कृष्ण के राधा जी के चरण कमलों में महाप्रभु जी के चरण कमलों का क्या क्या चिन्ह है, ये सब बतलाए, उनका चरण कमलों के साथ में उन चिन्हों का ध्यान करें, उनके मुखारविंद का ध्यान करें, उनके लीलाओं का ध्यान करें। सर्वत्र जीवन कर्तव्य कहाँ बा, जीवों का कर्तव्य, जीव लोग जीव कहाँ पर अधिक वास करे, सर्वत्र जीवन कर्तव्य कहाँ बास, कहाँ पर वास करना उचित है, वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला, यहाँ पर राधा कृष्ण की का प्रेम विलास जहाँ पर नित्य होता है, उसी वृंदावन में सब जीवों को रहने की चेष्टा। कैसे रहेगा बद्ध जी, एक आदमी कहा कि हम वृंदावन में वास करेंगे, वो वृंदावन में गया, खाने की चिंता हुई, अजय खाया भाई कैसे जाए, भिक्षा नहीं करेंगे, बस चिंता हो गई, मैं करूंगा इसकी व्यवस्था, रिक्शा चलाऊंगा, रिक्शा चलाऊंगा, कोई दुकान पाट कर दिया वहीं पर, कपड़े का बिजनेस कर दिया, कुछ हो गया कि कोई उठा लेकर के जो सब चला गया, बस हो गया वृंदावन, वृंदावन में ऐसा नहीं बात, वृंदावन में यदि किसी संत का संग मिल जाए और सब समय भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करते हुए और भूमि की महिमा बतलाएं और दिन रात उसी की चिंता करके रहे तो वृंदावन, अन्यथा स्थूल रूप में वृंदावन भूमि में रह करके अपराध संचय करके हम भूल जाए, तरह तरह के अभाव, तरह तरह की समस्याएं वहां पर पैदा होगी और वृंदावन भूमि में रहने नहीं देगी, कुछ दिन रहेंगे और ऐसा उत्पात होगा कि तुमको छोड़ करके चला जाए, वृंदावन में रहेंगे बंदर चश्मा ले लेंगे, जा रहे हैं चश्मा उतार करके आपको दिखलाते दिखलाते पहन लेंगे, और भी दो पैर वाले भी बंदर मान, दो पैर वाले तो बंदर होते हैं, और भी कुछ है जो आपका सर्वस्व ले लेने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जड़ भाव लेकर के वहां पर मत रहो। वृंदावन जल भी ना रही गई चीज का पहले तो मत लिखो, स्थूल बुद्धि लेकर, और जाओगे तो चिरकाल न रहो। और गोवर्धन चढ़िया ना देखो गोपाल, और गोवर्धन पर चढ़ करके गोपाल को मत देखो, उनको साधारण पत्थर ज्ञान करेगा, वृंदावन भूमि को साधारण भूमि ज्ञान करेगा, वहां के वासियों को तुम और पेड़ लताओं को स्थूल वृक्ष समझेगा। दर्पण की जरूरत होगी तो वहां के नीम पेड़ पर चढ़ करके डाल तोड़ ले आएगा, उसे वहां के पत्थरों को वृंदावन के उसी पर पैर रगड़ेगा, न जाने क्या क्या करेगा। इसलिए स्थूल बुद्धि से न रह करके वैष्णव के अनुगत में सेवा की भावना से वहां रहा जाए। इसलिए वृंदावन भूमि कैसे रहा जाए, करेंगे कैसे रहा जाए। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी अपनी टीका में कह रहे हैं, ऐसे रहो जैसे मैं कह रहा हूं। उद्धव जी वृंदावन में गए, उनको कोई ओर छोर ओर किनारा नहीं मिला वृंदावन। देखा जी ये गोपियां ही वृंदावन, और कृष्ण इस वृंदावन में ही गोपियों में ही सब समय, कृष्ण को साक्षात रूप में या वृंदावन को उपलब्ध नहीं किया गया। तो उन्होंने गाया श्रीमद्भागवत आशा महो चरण रेण दिशाम हम श्याम वृंदावने किमपि गोलप्रलोभ या दुष्पदन स्वजन आर्य कथम चरित्रा भेजे मुकुंद पदवेन। ओ मैं वृंदावन में, वृंदावन में चाहता हूं, वहां पर कैसे कैसा रहना चाहता, गुल्म लतौषधि, गुल्म औषधि भी होकर, औषधि माने जल इत्यादि औषधि, गुल्म माने छोटे छोटे
लता होता है,
होते हैं और फिर बरसात के साथ में और फिर अपने सीजन में होकर के ग्रीष्म काल में सूख करके घर पर खत्म हो जाते हैं। ये लोग जैसा है तो ऐसे गुल्म बन जाऊं या लता बन जाऊं। इसलिए सहज रूप में दीनहीन होकर के गोपियों की चरण भूमि की सेवा कर सकूं, ऐसी किसी को भावना हो तब तक वृंदावन में लड़े। इसलिए कहते हैं आशाम हो चरण रेण दुशाम हूं, मैं वृंदावन में गोपियों की चरण भूमि की सेवा करने के लिए जुसाम हूं, मैंने सेवा करने के लिए मैं वृंदावन में रहना चाहता हूं। कैसे, किसी भी प्रकार से गुल्म लता औषधि के रूप में, जिन्होंने जिन गोपियों ने, क्यों कि वहां पर गोपियों ने दुष्पजन स्वजन आर्य पत्म चहित किया, दुष्ट जिसको कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसे स्वजन आर्यपत, स्वजन माने भाई बंधु माता पिता पति स्त्री, ये सब आर्यपत माने पति को भी, वेद धर्म कुल धर्म जाति धर्म विवाह धर्म इत्यादि का की मर्यादाओं को भी तोड़कर हित पर भेजे मुकुंद पदवे, मुकुंद देवी पति को भजन किया था जी गोपी, कृष्ण को भी वशीभूत कर दिया था, ऐसे गोपियों की चरण धूलि की सेवा के लिए ही वृंदावन में मैं हूँ, इस भावना से रहे। तो कैसे होगा, सब समय उन्हीं की लीला कथाओं का गान कर सके, और ऐसा कोई भक्त मिल जाए जिनके अनुगत में ऐसा,
तब तक ठीक है, और नहीं तो वृंदावन में बास करके भी आश्रम के धीरे धीरे कुछ दिन रहेंगे तो फिर उसकी मर्यादा उसकी महिमा सब उपेक्षा करने लगे। जैसे बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं अबोध लोग गुरु वैष्णव और संतों का संग पा करके भी जब सहज रूप में उनका संग होने लगता समझते हैं कि ये तो ऐसा बस उपेक्षा करने इस तरह से वृंदावन की उपेक्षा करें। धाम ऐसा है वृंदावन अनाधिकारी को नहीं रहने देगा, को खदेड़ देगा, जैसे कहेंगे तुम्हारे बच्चे बीवी मैया भाई सब रो रहे हैं, तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा भी नहीं हुआ उसको भी ठीक करने के लिए जाऊं, किसी से मिलने के लिए जाने की इच्छा हो, कुछ रुपयों के लिए कुछ कहीं काम अटका हुआ है उसके लिए चले जाएंगे, साधु संग परमार्थ वृंदावन भूमि यह सब छोड़ करके फिर आना रहा, फिर धाम आने नहीं देंगे। संपत्ति मध्य तो यही पहला बतला है ना, वृंदावन की धूनी का नहीं के प्रति प्रीति ही वही तो संपत्ति है, किंतु हम लोग उसको नहीं समझ करके तुच्छ संपत्ति के लिए जाते हैं, कोई धाम ही करा देता है जिनका अधिकार नहीं, बस इधर से उठरता है। पहले तो बड़ी उत्कंठा रहती है, सुना है ना कि वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है, वहाँ पहुँचने पर स्थूल रूप में कुछ देख नहीं पाते, उपलब्धि नहीं हो पाती, नहीं तो वृंदावन के लोग नौकरी करने के लिए बॉम्बे और कलकत्ते में भागेंगे, बड़े बड़े जज बैरिस्टर और बड़े धनी मानी सब लोग सब नौकरी छोड़ करके नंगे हो करके वृंदावन में आकर के जो कलकत्ते नौकरी करे गए हैं उन्हीं के घरों में एक छोटी झूठी रोटी मांग करके जीवन निर्वाह करते हैं। तो ब्रजवासी दोनों में कौन हुआ, कौन यथार्थ वर्ष जो यहाँ जन्म ले करके ब्राह्मणपुर में धनपुर में या बिजपुर में लेकर कुरुपियों के लिए जब बाहर चला गया और बाहर के लोग उस सबको छोड़ करके यहाँ पर आ गए किसी प्रकार से उन्हीं की रोटी पर जीवन धारण करके मान अपमान सब कुछ सा करके तो कौन ब्रजवासी। इसलिए धाम ऐसे लोगों को नहीं मिले, इसलिए वृंदावन धाम भूमि यहाँ पर नित्य लीला रास, नित्य लीला रास अभी भी होती है, आगे भी होता रहेगा, पहले भी ये वृंदावन यदि कोई रास देखे, महाप्रभु आए कितने दिन रहे दिन करके चले दिखलाए कि मैं भी अनाधिकारी चले गए, उनके संग साथी लोग उनको देखा जैसे ये बार बार मूर्छित हो जाते हैं शरीर सारे छूट जाता है, इसलिए उनको पकड़ करके थल बांध करके उनको लेकर के चले, किंतु महाप्रभु सब समय वृंदावन में सौन मध्य जिले कौन श्रेष्ठ सौन, जितने प्रकार के सवर्ण है गुरु शिष्य इत्यादि सुनते हैं गुरु के निकट स्वर्णों का भी तारतम्य है, जीव तत्व क्या है माया तत्व क्या है कृष्ण तत्व क्या है ये सब स्वर्णीय है, सुनते 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 सबसे अंतिम स्वर्ण कहते हैं विक्रीड़ितम ब्रजभुज दंत च विष्णु भक्ति परम भगवती प्रतिलब्ध कामन हृदरोगमाशु अपि राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाएं राष्ट्रीलाएं इत्यादि इनका श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ और अंतिम श्रवण है, सब श्रवण कर लेने के बाद में उनका जीवन इससे बढ़कर क्या और, तो इससे होगा क्या हृदय में रहने वाली कामनाएं हैं जो फिर करो हृदरोग माने क्या हृदरोग बहुत हो सकता है, प्रधान रूप में हृदरोग माने संसार के भोगने की कामना ये हृदरोग, और एक हृदरोग और भी है गोपियों का जो विरह है कृष्ण के मिलन के लिए
वो भी एक रूप हो गया। तो गोपियां उसके उपशम के लिए, कृष्ण का संग के लिए प्रार्थना करती हैं। और हम लोग इंद्रों को दूर करने के लिए साधु संग, गुरु इत्यादि का संग हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए कृष्ण की ऐसी कथाएं हैं, यदि श्रद्धा पूर्वक यदि कोई सुने, अनुसुणिया, निरंतर श्रवण करे, अनुसुणिया गुरु के मुख से सुने और निरंतर सुने श्रद्धा पूर्वक, सुनते सुनते उसके प्रभाव से भक्ति जितनी ही होगी उतने ही परिमाण में संसारिक कामना वासना सब दूर होता जाएगा। पहले अपने हृदय को निर्मल करके और तब भगवान की कथाओं को सुनेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा तो कोठी जन्म लग जाएगा। मन को ही हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए कामनाएं वासनाएं काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब दूर करने के लिए भगवान की सब लीला कथाओं का श्रवण करना है। केवल लीला कथाओं का श्रवण करने से ही ज्ञानी प्रयास जीवन की सतान प्रसंगम विद्य संविदो भवन तरित कर्म रसायना तथा तद्योष नाथ आशु अपवाद वर्तनी सद्भाव भक्ति भक्ति अनुक्रमशा। भगवान की लीला कथाओं के श्रवण से ही यहाँ पर लीला कथाओं का हो रहा है, उसी के द्वारा ही पहले संबंध ज्ञान होगा, धीरे धीरे भजन की क्रिया आएगी दूर भी हो जाएगा, धीरे धीरे अनर्थ दूर होकर के निष्ठा रुचि आसक्ति बस हरि कथाओं का श्रवण करते ध्यान करें, सेवन करें, सेवन करने का सेवन माने प्रतिग्रास सेवन करने से जैसे पुष्टि पुष्टि और सुदुपाय, अर्थात सुदुपाय माने क्या, खुदा निवृत्ति, खुदा निवृत्ति होगी पुष्टि भी होगी पुष्टि भी होगी। ऐसे हरि कथाओं के श्रवण से संसार की निवृत्ति, भगवत तत्व ज्ञान और भगवत दर्शन क्रमशः एक स्तर में सकते क्या है, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र सुपुष्टि पुष्टि कृपाया। बहुत ही सुंदर श्लोक है, क्या कहते हैं,
भक्ति परेशान भव,
भगवान की भक्ति करने से पहले भक्ति भक्ति होगी, परेशानुभव पर इस जो परेशान उनकी अनुभूति होगी और इतर बाइक विषय में वैराग्य होगा। जितने परिमाण में भक्ति होगी अर्थात उपासना होगा, भक्ति का हम अनुशीलन करें, उतने ही परिमाण में भगवत अनुभूति चली होती चली जाएगी। भगवत अनुभूति नहीं हो रही है, भजन कर रहे हैं और अनर्थ भी दूर नहीं हो रही, वैराग्य भी नहीं उदित हो रहा, विरक्ति नहीं हो रही है, तब तो कुछ फल नहीं। यदि तीनों एक साथ में होगा तब तो होगा सुख तुष्टि पुष्टि कृपायन, एक ही साथ में खाएंगे पेट फटा जाएगा, पुष्टि भी शरीर की होती जाएगी। ऐसे हाँ यथा करुण विसिंचने त्रिप्यन्ति तत्स्कंद भूयो प्रसाद प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणि तथैव सर्वाणि। इस श्लोक को सभी लोग याद करते रहते, भारत में इम्पोर्टेंट श्लोक, यथा करोर मूल निषेचन, सब वैष्णव को वैष्णव मात्र को याद रखना चाहिए, यथा करोर मूल निषेचन, जैसे पेड़ का मूल सिंचने से उसका धड़ भी मोटा होगा, पत्ते भी हरे भरे रहेंगे, पुष्ट हो जाएगा, फल फूल भी उसमें लग जाएंगे, छाया भी हो जाए विराट हो जाए। प्रत्येक पत्ती में पानी देने की जरूरत नहीं, प्रत्येक डाली पत्ता और फल और फूल में मंजरी में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, मूल में दो, कहा जाए मूल में भी देंगे, मूल में ना दें जड़ में नहीं देंगे, पत्तियों में पुष्पों में डालियों में फलों में फूलों में हम पानी देंगे तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा, और पत्ते पत्ते सब सड़ पड़ गए। जैसे अच्छा ठीक है, पेड़ के जड़ में भी देंगे और पत्तों को भी धो देंगे, ये सब कहे तभी गड़बड़ हो जाए। कहते कैसे, इसलिए दूसरा उदाहरण देते, क्योंकि पेड़ में वो सब चीजों का उदाहरण ठीक से नहीं आएगा। पेड़ में पत्तों को भी धो सकते हैं और पेड़ की जड़ भी देने कोई हल नहीं है, किंतु दूसरा जो उदाहरण दिया करो ऋषि चिन्ह कृपयंति तपस्कंद भूज उपशाखा गुरुपशाखा प्राणोपहार। जैसे मुख में आहार देते हैं तो पेट हाथ पैर दिमाग सब कुछ पुष्टि हो जाए, शक्ति उसमें हो जाती। यदि कहो जैसे पेड़ में पानी दिया जड़ में पत्तों को भी धोया, तो वैसे ही हम मुख में आहार देते हैं, आंख में यह भी आहार दे देंगे, नाक भी दे देंगे और हाथ को काट करके उसमें भी पेड़ को काट करके उसमें दे देंगे। ये तरीका ठीक है, यहाँ पर सुख से अपने आप ले, इसलिए वैसे पत्तियों में मत करो। अतः देवता देवी और ये दूसरे हैं पार्षदों का मत भजन करो, जड़ कृष्ण है वहीं पर देने से सफल होगा और सब देवताओं में तुम्ही को भी दोगे तो ये सफल होगा। इसलिए ऐसा नहीं, एक कृष्ण की उपासना से ही सबकी उपासना हो जाएगी, ऐसा दृढ़ विश्वास करके उनकी उपासना। उपास्य मध्य कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य जुगल राधा कृष्ण नाम। कलियुग में जितनी प्रकार की उपासनाएं हैं उन सब में नौ प्रकार की उपासना श्रेष्ठ है। नौ प्रकार की उपासना में से श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन प्रधान है, इनमें भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराध है नाम ले रहे, निरपराध हो करके यदि कृष्ण नाम किया जाए तो प्रेम सर्व। इसलिए कलयुग में नाम और रानी अभिन्न है, इसलिए राधा कृष्ण जो नाम है, राधा जी का नाम किस लिए लेंगे, इसलिए कि कृष्ण प्रसन्न हो और कृष्ण नाम इसलिए करेंगे राधा जी, इसलिए जुगल नाम
नाम गाने
राधिका
चरण
पाए
राधा नाम गाने
जिसने चरण, ये दोनों को करना, दोनों को कृष्ण। तो हम लोग तो हरे कृष्ण करते हैं, इसमें तो सब हरि का नाम नहीं, ये जुगल नाम। हरे राधिके कृष्ण और हरे राधिके राम राधा, इसलिए ये जुगल नाम। इस जुगल नाम से श्रेष्ठ और कोई नाम, नाम यदि करते हैं तो बिना उनके रूप का ध्यान किए हुए भी यदि करेंगे तो वो आ जाएगा, वो कृष्ण स्वयं राधा जी दोनों आ जाएंगे। और जितने उपाय हैं उसमें एक कृष्ण नाम ही जो है वो मूल चीज है, अंगी है और बाकी सब अंग अंग। इसलिए स्मरण भी यदि होगा तो कीर्तन प्रभावी स्मरण होगा। सनातन गोस्वामी ने भी बृहद भागवतामृत में ठीक इन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यद्यपि राधा मूला भक्ति में स्मरण प्रधान है, किंतु इधर में बतलाया गया है यद्यपि अन्य भक्ति पलौ कर्तव्या भक्ति संयोग यदि और स्मरण भी करते हो तो कीर्तन को साथ में लेकर के क्यों अंगी है। इसलिए कलयुग में यदि स्मरण भी होगा तो नाम कीर्तन के प्रभाव से स्मरण
निकला
गया, इसलिए नाम ही प्रधान है। इसलिए राधा कृष्ण का जुगल नाम ही हम लोगों का प्रधान उपास्य है। भुक्त समझना ये बात जरूर है, साधु संग जितना निर्मल आपको प्राप्त होगा रसिक वैष्णवों का संग उसके अनुवर्त में नाम करें तो वह नाम
ऊपर तक ले जाए, नहीं तो कभी भुक्ति और कभी मुक्ति दे करके निरस्त होकर के जाए, छोड़कर चला जाए। संत का बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा तन्नाम रूप कविताजी सुकृतनानुक्रमेण रसना मनुष्य नियुक्त तिष्ठन ब्रजे सदानुरागी ज्ञानुगामी कालम नये अखिलानुचित उपदेश। यही सबसे उपदेश, वृंदावन में रह करके उन्नत रसिक और अपने से उन्नत वैष्णव रसिक और कृतज्ञ वैष्णव के सामने में रह करके निरंतर राधा कृष्ण की इससे बढ़ता कर सबका सार यही है। Thank you.